अध्याय 11 सुनयात सेन और उनके तीन सिद्धांत। सुनयात सेन एंड हिज थ्री प्रिंसिपल्स। यह अध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक तारिका ओबेराय द्वारा लिखा गया है। सुनयात सेन, जिन्होंने अपना सारा जीवन गणतंत्र पर न्यौछावर कर दिया, चीनी भाषा में सुन चुंग शान के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म कुआंगचोउ के निकट शिगशान में 12 नवंबर 1866 ईस्वी को हुआ था। वह न सिर्फ महान आदर्शों और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, बल्कि उनके पास एक विशिष्ट कल्पना शक्ति भी थी। साथ ही वह न केवल चीन के राष्ट्र नेता थे, बल्कि एशिया के विभिन्न समाजों के लिए क्रांतिकारी उत्साह, आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत भी थे। चूंकि वह पद दलितों के अग्रणी नेता थे, इसलिए 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अर्धदेव यानी डेमी गॉड का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रत्येक चीनी परिवार में उनका नाम आदर्श वाक्य के रूप में लिया जाने लगा और उनका दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों की आधारशिला बना। जबकि वह न तो कोई चालाक संगठनकर्ता थे और न ही अपने विचारों को उन्होंने सुस्पष्ट ढंग तथा निर्णायक रूप से परिभाषित शब्दावली में शामिल किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके दल के भीतर ही एक तरह का असंतोष और विचारधारात्मक असहमति देखने को मिली। लेकिन उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व और तीव्र देशभक्ति ने उन्हें चीनी राष्ट्रपिता और चीनी गणतंत्र का संस्थापक जैसी उपाधियों का गौरव प्रदान किया। डॉक्टर सुनयात सेन एक गरीब किसान परिवार से संबंधित थे। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में प्रवेश किया, लेकिन परिवार की गरीबी के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बाधित हुई और वह चीनी शास्त्रीय ज्ञान से वंचित रहे। 1879 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में सुन ने होनोलुलु के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के एक विद्यालय में दाखिला पाया और 1883 ईस्वी में स्नातक की उपाधि हासिल की। अपने स्कूली दिनों में सुन ने ईसाई धर्म स्वीकार करने की पेशकश की, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और इस वजह से शिक्षा को अमेरिका में आगे जारी रखने की उनकी इच्छा बाधित हुई। 1883 ईस्वी के अंत में वह हांगकांग वापस आए और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने विवाह भी कर लिया और होनोलुलु की एक छोटी यात्रा से लौटकर फ्रांस के हाथों चीन की पराजय देखी। मांचू वंश की अवनति और पराजय से पूरी तरह निराश होकर उन्होंने उसे उखाड़ फेंकने के लिए विचारों का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। चीन में 1883 ईस्वी से 1886 ईस्वी के उनके प्रवास के दौरान चीनी जनता ने उन्हें एक नीतिविहीन और कट्टरपंथी क्रांतिकारी युवा के रूप में देखा। 1887 से 1892 ईस्वी के बीच उन्होंने हांगकांग में एक मिशनरी चिकित्सा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और शल्य एवं चिकित्सा शास्त्र में दक्षता के साथ और सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सुन के जीवन काल के उन गिने चुने वर्षों में जब उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, उनके जीवन पर हवाई और हांगकांग का गहरा असर पड़ा। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा वह उनके अपने जिले से बिल्कुल भिन्न था और इस तस्वीर ने उनके युवा मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी। चिकित्सा स्कूल में सुन ने अपने 3 निकटतम सहयोगियों के साथ क्रांतिकारी परिवर्तनों की अवधारणा पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और 4 बड़े विद्रोही का सेहरा उनके सिर बंधा। चीन और ब्रिटिश शहरों की बिल्कुल भिन्न प्रशासनिक व्यवस्था ने सुन के हृदय में असक्षम छिंग सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तीव्र इच्छा जगाई। 1894 ईस्वी के पहले, जबकि वह छिंग राजवंश को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे, सुन ने सुधारों के माध्यम से चीन को बचाने की बात सोची। सुन 1894 ईस्वी में ली हुंग चांग, जो उस समय वायसराय थे, के साथ साक्षात्कार के उद्देश्य से राजधानी पहुंचे, पर ली पहले से ही जापान के साथ चल रहे युद्ध की वजह से अत्यंत व्यस्त थे, अतः वह सुन से नहीं मिल पाए। उनकी इस दोहरी निराशा से उनकी इस दोहरी निराशा, जो उनकी खुद के अनुभवों और पेचिंग में छिंग अवनति के कारण उत्पन्न हुई, से उनकी राजवंश को उखाड़ फेंकने की दृढ़ धारणा को और भी बल मिला। क्रांति को अपना आखिरी विकल्प मानते हुए सुन ने बाहर बसे चीनियों, गुप्त संस्थाओं एवं समाजों, ईसाई धर्म में परिवर्तित लोगों और मिशनों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं से सहायता और सहयोग लेने का निश्चय किया। उन्होंने 112 लोगों की आरंभिक सदस्यता के साथ 24 नवंबर 1894 को होनोलुलु में छिंग चुंग हुएई अर्थात चीन जगाओ संस्था रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की। 21 फरवरी 1895 को उन्होंने हांगकांग में इस समाज के मुख्यालय की स्थापना की और विभिन्न चीनी राज्यों में इसकी कई शाखाएं भी खोली। इसके सदस्यों ने शपथ ली कि वे छिंग को बाहर करेंगे, चीनी शासन को बहाल करेंगे और एक संघीय गणतंत्र स्थापित करेंगे। एक्सपेल द छिंग, रिस्टोर द चाइनीज रूल एंड एस्टेब्लिश ए फेडरल रिपब्लिक। इस तरह पहली क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई। इसके तुरंत बाद कुआंगचोउ में सुन ने एक गुप्त संगठन गठित किया जिसका नाम वैज्ञानिक कृषि संस्था, साइंटिफिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन था, और इसका मुख्य उद्देश्य कुआंगचोउ में क्षत्रिय सरकारों पर कब्जा कायम करना था। 9 सितंबर 1895 को उनके संगठन के मुख्यालयों पर छापे पड़े। सुन हांगकांग भाग निकलने में सफल रहे, पर वहां उन पर 5 वर्षीय प्रतिबंध लग जाने के कारण वह जापान चले गए। 1 अक्टूबर 1896 को सुन यातसेन लंदन पहुंचे, जहां उनके साथ घटी अपहरण की घटना ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। सुन यूरोप में 2 वर्षों तक रहे और लगातार राजनीतिक एवं सामाजिक विकास क्रम का अध्ययन करते रहे। विभिन्न औद्योगिक देशों में बढ़ती हुई समाज सुधार और क्रांति की भावना की ओर लोगों के झुकाव को देखते हुए उन्होंने इस प्रकार के हड़तालों, आंदोलनों और मजदूरों के विवादों से चीन को बचाने का निश्चय किया। 1897 में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रवादी और प्रजातांत्रिक क्रांति को पूरा करने के लिए सामाजिक क्रांति के विचार को विकसित किया। इसी के आधार पर सुन के प्रसिद्ध 3 जन सिद्धांतों, 3 पीपल्स प्रिंसिपल्स का निर्माण हुआ, जिन्हें चीनी भाषा में सानमिन चुई के नाम से जाना जाता है। 1897 में वह जापान लौटे। अब वह क्रांतिकारी कार्यों का दिशा निर्देश करने में ज्यादा सक्षम थे। जापान के प्रसिद्ध और जाने माने वह सब गणमान्य व्यक्ति जिनके हृदय में एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आक्रोश की भावना भरी हुई थी, उनके समर्थक हो गए। पर दूसरी ओर जापान में बसे चीनी समुदायों के बीच जड़ता और गैर राजनीतिक भावना अब तक कायम थी। ऐसा खासकर उनकी छिंग विरोधी गतिविधियों में भागीदारी और सामान्य भय के कारण था। हालांकि गुप्त समाज और समुदायों का होना एक अपवाद के समान ही था, पर उनके बीच भी शिक्षा, आपसी संबद्धता और किसी भी प्रकार के नेतृत्व को स्वीकार करने की समझदारी का पर्याप्त अभाव था। बॉक्सर आंदोलन का लाभ उठाते हुए सुन ने हांगकांग के उत्तरी भाग हुएईचोउ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, पर दुर्भाग्यवश इस योजना का भेद खुल गया, जिसकी वजह से सुन को भागना पड़ा और हुएईचोउ विद्रोह की अत्यंत दारुण परिणति हुई। लेकिन इसका एक दूरगामी परिणाम यह हुआ कि इससे सुन की छवि सुधरी और अब वह मात्र एक विद्रोही नहीं बल्कि एक देशभक्त और समर्पित क्रांतिकारी के रूप में जाने लगे। इस तरह सन 1902 से 1905 के बीच क्रांति का भाग्य क्रमशः बेहतर स्थिति के लिए सुधरा। सुन ने इस बीच व्यापक पैमाने पर वियतनाम, जापान, होनोलुलु और अमेरिका की यात्रा की और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक समर्थन जुटाने के लिए रैलियां और सभाएं आयोजित की। 1905 की बसंत में सुन ने यूरोप की यात्रा की और ब्रसेल्ज, बर्लिन एवं पेरिस जैसी जगहों पर ढेर सारे लोगों को अपने क्रांतिकारी समाज का सदस्य बनाया तथा उन्हें अपने आदर्शों की ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। 20 जुलाई 1905 को सुन ने सभी क्रांतिकारी समाजों के एक संगठन में बंध जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य प्रयासों की पुनरावृत्ति और उनके स्वयं के बीच शक्ति और सत्ता की लड़ाई रोकना था। अंततः 20 अगस्त 1905 ईस्वी को चीनी एकीकृत संघ चुंगकुओ थुंगमंग हुयेई अथवा संक्षेप में थुंगमंग हुयेई की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सुन स्वयं बने। थुंगमंग हुयेई के सदस्यों की संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई और इसकी शाखाओं की स्थापना न सिर्फ चीन में की गई बल्कि विदेशों में महत्वपूर्ण जगहों पर भी शाखाएं खोली गई। 20वीं शताब्दी का चीन थुंगमंग हुयेई का मुखपत्र बना, जिसे बाद में जापानी सरकार ने कुछ विवादास्पद लेखों के प्रकाशन के कारण प्रतिबंधित कर दिया, पर इसका प्रकाशन फिर से एक नए नाम पीपल्स ट्रिब्यून के साथ 26 नवंबर 1905 ईस्वी को शुरू हुआ। इस तरह थुंगमंग हुयेई दल की स्थापना चीनी राष्ट्रवाद के विकास में मील के पत्थर के समान थी, जिसे समाज के हर हिस्से और समूह का व्यापक समर्थन मिला और जिसने पारंपरिक रूप से चीन को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। थुंगमंग हुयेई एक बहुआयामी और बहुउद्देश्यीय संस्था थी, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इसने चीन को एक आधुनिक राजनीतिक दिशा एवं विचारधारा प्रदान की, इसलिए यह चीनी क्रांति की जननी के रूप में जानी जाती है। 1895 से 1911 ईस्वी के बीच क्रांतिकारियों ने कम से कम 10 असफल प्रयास किए। अंततः 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को उन्हें वुछांग पर सफलता मिली। हालांकि छिंग राजवंश समाप्त कर दिया गया था, पर उसकी जगह आया युआन शरखाई अपनी पूर्ववर्ती सत्ता के समान ही अधिनायकवादी निकला। इस वजह से सुन और युवन के बीच मतभेद इस कदर बढ़े कि जनवरी 1914 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं और विधान परिषदों को भंग कर दिया गया तथा चीन में अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई। सुन 1916 ईस्वी तक देश के बाहर चले गए, पर इसी समय 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने चीन में नई स्फूर्ति पैदा कर दी। खासकर इससे बुद्धिजीवी वर्ग अत्यंत प्रभावित और सक्रिय हुए। लेनिन ने एक नए और क्रांतिकारी ढंग से एक नए प्रकार का लोकतंत्र स्थापित किया। लेनिन ने एक नए और क्रांतिकारी ढंग से एक नए प्रकार का लोकतंत्र स्थापित किया था। चीनी अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था, जिसका स्वरूप फ्रांस और संयुक्त राज्य पर आधारित था, की असफलता से अत्यंत क्षुब्ध थे। 1918 ईस्वी और 1925 ईस्वी के बीच का काल सुन के जीवन का सबसे सक्रिय समय था, अतः यह काल उनके विचारों की सुव्यवस्थित जानकारी देता है।